हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के बुधवार के कार्यक्रम में। गीतामृत दूसरा अध्याय, भगवान अब आत्मज्ञान का ज्ञान अर्जुन को देने के पश्चात अब अगले श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं धर्म ज्ञान के ऊपर। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माधियुध्याश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माधियुध्याश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माधियुध्याश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान अर्जुन को अब अर्जुन के क्षत्रिय धर्म का स्मरण करा रहे हैं और इस श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, ये बात तुम समझ लो कि तुम एक क्षत्रिय हो, इस बात को भूलना मत। और क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा जो स्वधर्म है वो है युद्ध करना। और भगवान कहते हैं कि इसमें बिल्कुल भी तुम संकोच न करो, क्योंकि ये जो युद्ध तुम लड़ोगे ये कोई साधारण युद्ध नहीं, ये धर्म युद्ध होगा। अब इसकी पुष्टि धृतराष्ट्र के प्रश्न में भी हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र ने जो प्रश्न पूछा कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्र, कि वो धर्म क्षेत्र धृतराष्ट्र भी कुरुक्षेत्र की रणभूमि को धर्म क्षेत्र कह रहा था। तो यदि धृतराष्ट्र ये मान रहा है कि इस रणभूमि पर, इस धर्म क्षेत्र पर एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र, वो कौन सा युद्ध करने जाने वाले हैं? धर्म युद्ध। तो ये कोई साधारण युद्ध नहीं, यहां तक कि अंधे धृतराष्ट्र को भी दिख रहा था। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि यदि अंधे धृतराष्ट्र को भी ये दिख रहा है तो अर्जुन, तुम्हें तो अवश्य ही क्षत्रिय होने के नाते ये देख लेना चाहिए कि ये तुम्हारा स्वधर्म है और ये युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं, धर्म युद्ध है। तो इसलिए भगवान इस श्लोक के द्वारा धर्म ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। तो आज के श्लोक का पिछले श्लोक से क्या संबंध है वो हम देखेंगे। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई कल्याण नहीं, कौरवों के लिए भी क्या एक धर्म युद्ध था या केवल पांडवों के लिए? आजकल के जो आधुनिक युद्ध है उनकी क्या श्रेणी है? स्वधर्म की अन्य व्याख्या श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में की और ये जो शब्द भगवान ने इस श्लोक में इस्तेमाल किया है श्रेय, इसकी व्याख्या क्या? तो सर्वप्रथम यदि हम देखें कि आज के श्लोक और पिछले श्लोक का संबंध क्या है। पिछले श्लोक में भगवान ने श्लोक का अंत किया नत्वम शोचितुम अरहसि, और आज के श्लोक में भी भगवान कुछ उसी प्रकार से बोल रहे हैं न विकम्पितुम अरहसि। तो पिछले श्लोक में जो भगवान ने कहा नत्वम शोचितुम अरहसि, उसका अर्थ क्या है? शोक न कर, कि अर्जुन तुम व्यर्थ ही शोक कर रहे हो, ये कौरव दुर्योधन इत्यादि जो हैं तुम्हारे शोक के लायक नहीं है और तुम व्यर्थ ही शोक कर रहे हो। और न विकंपि तुम अर्हसि, इसका अर्थ है आज भगवान कह रहे हैं कि संकोच न करो। पिछले श्लोकों में भगवान ने कहा शोक न करो, आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं अर्जुन को संकोच न करो। ये इसलिए कि भगवान ने देख लिया कि अर्जुन का शोक दूर हो चुका है। कितने श्लोक भगवान को अर्जुन के शोक दूर करने के लिए कहने पड़े, 2.11 to 2.30, 20 श्लोक भगवान को 20 श्लोक कहने पड़े अर्जुन के शोक को दूर करने के लिए। तो अर्जुन का शोक दूर हो चुका, लेकिन फिर भी भगवान देख रहे हैं कि अर्जुन अब तक गांडी उठाए नहीं। अब हम तो इत्मीनान से बैठे हैं कि तो दूसरा अध्याय चल रहा है, आप कहां गांडी उठाएंगे, लेकिन भगवान इस प्रकार से इत्मीनान से नहीं वहां बैठे हुए थे कि मुझे और कितने 16 अध्याय सुनाने हैं। भगवान तो इस आशा में थे कि अब ठीक है, तुम्हारा शोक दूर हो चुका है अर्जुन, उठाओ गांडी और युद्ध शुरू करो। तो शोक दूर होने के पश्चात अब भगवान ने देखा कि संकोच कर रहे हैं अब अर्जुन, तो इसलिए भगवान ने अब इस श्लोक में अर्जुन का वो जो संकुचित विचार, संकोच से भरा हुआ चेहरा अर्जुन का देखते हुए भगवान कहते हैं न विकंपितुम अर्हसि। तो अर्जुन अब तक संकोच क्यों कर रहे थे, क्योंकि पहले अध्याय में अर्जुन ने इन सब धर्मों के विषय में पूछा था, कुल धर्म, स्त्री धर्म, जाति धर्म। तो अर्जुन ने आत्मज्ञान के विषय में सुना भगवान से, लेकिन ये सारे जो प्रश्न अर्जुन ने भगवान से पूछे थे प्रथम अध्याय में, अब तक भगवान ने इन प्रश्नों का उत्तर दिया नहीं। तो अर्जुन अब उन प्रश्नों को याद करते हुए अब संकोच कर रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे लेकिन हाव भाव से अपना संकोच व्यक्त कर रहे हैं। तो मानो अब अर्जुन इन धर्मों के विषय में अब संकोच कर रहे हैं युद्ध करने से। तो भगवान अर्जुन को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्जुन ये तुम्हारा उत्तरदायित्व तो नहीं है। किस विषय में? धर्म के विषय में ये तुम्हारा उत्तरदायित्व तो नहीं है। कौन से धर्म के विषय में? ये सारे जो धर्म है। तो भगवान ने चौथे अध्याय में क्या कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत, कि जब भी धर्म की ग्लानी होती है। तो भगवान ने उस श्लोक में ये नहीं कहा कि अर्जुन तुम जन्म लेते हो। भगवान क्या कहे, जब भी धर्म की ग्लानी होती है तो मैं अवतरित होता हूं और हर प्रकार का धर्म भगवान स्थापित करते हैं। ये जितने सारे धर्मों की चिंता अर्जुन कर रहे थे, इन सब धर्मों की स्थापना भगवान स्वयं व्यक्तिगत रूप से आकर करते हैं। तो भगवान अर्जुन को ये बोल रहे थे कि ये धर्म का डिपार्टमेंट मेरा है, तुम क्यों संकोच कर रहे हो? तुम्हारे लिए स्वधर्म, तुम्हारा स्वधर्म अभी जो तुम्हारे सामने, तुम्हारा जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को तुम निभाओ। तुम किसी और की ड्यूटी के विषय में संकोच मत करो, और किसके विषय में तुम संकोच कर रहे हो, वो व्यक्ति जो तुम्हारे सामने ही, मैं, मुझे करना चाहिए कि कुल धर्म, ये स्त्री धर्म और ये जाति धर्म, इनका क्या होगा, ये सब के विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी है अर्जुन। इसलिए अर्जुन के उस संकोच को ध्यान में रखते हुए भगवान ने ये श्लोक आज कहा, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य, कि अर्जुन तुम्हारा स्वधर्म है, बस उस पर फोकस करो। भगवान ये याद दिला रहे हैं कि द्रोणाचार्य के गुरुकुल में जब उस पक्षी की आंख पर निशाना लगाने के लिए कहा गया था तो और कुछ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था ना, केवल उस पक्षी की आंख दिखाई दे रही थी। उसी प्रकार से ये बाकी सारे धर्मों को मत देखो, तुम तुम्हारे सामने ये जो खड़े हैं इनको, इनका संहार करना ये तुम्हारा धर्म है, इमीडिएट धर्म। तो भगवान ये सिखा रहे हैं कि हमारे जीवन में भी एक होता है हमारा इमीडिएट धर्म, उसे कहते हैं तात्कालिक इमीडिएट धर्म, और एक है जो धर्म हम इमीडिएट धर्म पालन करने के पश्चात उसे स्थापित करते हैं। जैसे कि कोई विद्यार्थी कॉलेज में गया तो अब उसका इमीडिएट धर्म क्या है कि वहां पर जो उस साल का सिलेबस है वो पहले साल में यदि है तो उस साल का जो सिलेबस है वो पढ़े, यदि वो थर्ड ईयर का सिलेबस लेके पढ़ाई शुरू कर दे या पीएचडी आगे उसने सोच रखा होगा कि पीएचडी भी करूंगा तो उसकी किताब भी बिलाल लाके पढ़ रहा है फर्स्ट ईयर में, तो लोग उसे मूर्ख कहेंगे कि भाई तुम्हारा स्वधर्म अभी फर्स्ट ईयर पास करना है, तुम कहां छलांग लगा रहे हो पीएचडी में। तो वैसे ही भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हारा स्वधर्म देखो, इसको छोड़ के तुम ये चिंता कर रहे हो कि इनके जो आगे वंशज उनका क्या होगा, वो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो फिर वो सारे नरक जाएंगे और फिर नरक में क्या होगा, ये सब मैं देख रहा हूं, मेरा डिपार्टमेंट गांडीव तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में नहीं, उठाओ और युद्ध करो। तो इसलिए अर्जुन को वो संकोच हो रहा था प्रथम अध्याय में जो उन्होंने भगवान के सामने ये प्रस्ताव रखा उसको याद करते हुए। तो यदि हम देखें आध्यात्मिक और भौतिक स्तर पर, तो भौतिक स्तर पर अक्सर हम अपने आप को शोक में पाते हैं, है ना? जैसे प्रथम स्कंद में नारद मुनि के उपदेश व्यास देव जी को श्रीमद् भागवत में वो कहते हैं एतद्धि आतुर चित्ताणाम मात्रा स्पर्शे छया मुह भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरि चर्याणु वर्णनम। नारद मुनि व्यासदेव जी को कहते हैं कि इस भौतिक संसार में हर एक जीव जो है उसका चित्त आतुर रहता है या शोक अवस्था में रहता है, और दो प्रकार के शोक होते हैं, एक शोक कि मुझे ये वस्तु प्राप्त नहीं हुई, ये इंद्रिय भोग प्राप्त नहीं हुआ, ये पद प्राप्त नहीं हुआ, ये व्यक्ति प्राप्त नहीं हुआ, इसका शोक। वन लैमेंटेशन फॉर द लिविंग एंटिटी इज व्हाट आई हैव नॉट अचीव्ड एंड द अदर लैमेंटेशन इज व्हाट आई हैव अचीव्ड आई हैव लॉस्ट, कि जो मुझे प्राप्त हुआ था वो छूट गया मेरे हाथ से। तो भौतिक संसार में या भौतिक स्तर पर व्यक्ति हर समय शोक अवस्था में रहता है। There is no question that he will be out of lamentation. जैसे अर्जुन भौतिक स्तर पर सोच रहे हैं कि मैं युद्ध करूं तो मैं शोक में जाऊंगा, नहीं करूं तो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो दोनों भौतिक स्तर पर सोच रहे हैं, करना और नहीं करना दोनों को भौतिक स्तर पर सोच रहे हैं। और फिर आध्यात्मिक स्तर पर होता क्या है, ठीक है हम शोक अवस्था से बाहर निकलते हैं या बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो अध्यात्म में आने की कोशिश करते ना, हम सब जो कृष्ण भावना भावित इस आंदोलन में आए हैं कृष्ण भावना भावित बनने के लिए, तो अधिकांश हम किसी न किसी प्रकार की शोक अवस्था में थे, और उस शोक अवस्था से अपने आप को मुक्त कराने के लिए हमने, चलो देखते हैं कि इस मंदिर में कोई उपाय है क्या। तब होता क्या है कि जब हम आध्यात्मिक स्तर पर आते हैं तो संकोच संकोच रहता है कि ये जो भी महामंत्र बताया गया है ये दूर करेगा क्या मेरा शोक। जैसे हाल ही में हमारे प्रेरणा हुआ, तो प्रेरणा के पश्चात कुछ विद्यार्थी वो प्रश्न पूछ रहे थे मुझसे, और एक ये बहुत ही कॉमन सा प्रश्न, तो संकोच उन्हें हो रहा था, तो उत्तर में मैंने हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए कहा, तो उनका ये प्रश्न था कि ये हरे कृष्ण महामंत्र उल्टा क्यों है, पहले हरे राम होना चाहिए ना, ये पहले हरे कृष्ण क्यों है। और फिर रामचंद्र जी पहले आए थे ना कृष्ण से, उनका नाम पहले होना चाहिए। तो यदि ये पूछा जाए, ठीक है रामचंद्र जी पहले आए थे तो आपने जप किया उनका, तो जैसे जब कुछ करने के लिए कहा जाता है तो संकोच, ये प्रश्न उठते हैं, ये उल्टा है, ये पहले क्यों नहीं, वो बाद में, ये सब चार नियम ही क्यों, और जब माला पे ही क्यों, इतने सारे प्रश्न होते हैं, माला पे ही क्यों जप करना चाहिए। और फिर धीरे धीरे जब हम ऐसा नहीं कि प्रारंभ करने में अपना संकोच दिखाते हैं और शुरू भी कर दिया, उसके बाद में भी फिर प्रभु जी एक महीना हो गया कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कृष्ण प्रेम कहां है, एक महीना हो गया कृष्ण प्रेम अभी तक नहीं मिल रहा है, तो फिर बाद में संकोच उसमें आने लगता है कि 16 माला करूं कि नहीं करूं, एक दो माला में तो कुछ सैंपल नहीं दिख रहा है कृष्ण प्रेम का, तो 16 माला में कुछ मिलेगा कि नहीं पूरा, तो फिर और संकोच। फिर बाद में जब देखते हैं बाकी भक्त 16 माला कर रहे हैं, कोई 32 माला कर रहा है, तो फिर थोड़ा मन में ये अलग अलग प्रकार के विचार कि अरे वो तो 32 करता है और वो ना धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया, तिलक विलक लगाता है, वो कंठी माला पहन लिया उसने, तो दीक्षा भी हो गई, भक्ति शास्त्री पास हो गया, तब फिर मन में वापस से उत्साह उमड़ता है कि नहीं, मुझे भी कुछ कर दिखाना चाहिए। हाँ चलो फिर अगले दिन 3:30 बजे उठ के मंगल आरती के लिए रेडी, 16 माला पहले खत्म मंगल आरती से, और फिर एक हफ्ते बाद फिर से संकोच कि पता नहीं एक हफ्ते तक मैं मंगल आरती के लिए आया लेकिन अभी तक मंगल आरती याद ही नहीं हुई। तो श्रील प्रभुपाद वो कहा करते थे कि उन्होंने जब पाश्चात्य देश में प्रचार प्रारंभ किया तो ये जो अमरीकी नवयुवक और नवयुवतियां उस समय के, इनके अंदर बिल्कुल कोई संकोच नहीं था। प्रभुपाद ने ये गुण देखा इनके अंदर कि इनके अंदर बिल्कुल संकोच नहीं था कि कैसे लोग क्या कहेंगे। बहुत बार ये संकोच रहता है कि समाज क्या कहेगा, अरे तुम और कोई मंदिर नहीं मिला तुम्हें जाने के लिए, भारत में कितने सारे मंदिर है, हरे कृष्णा में जाना था, तो उनको कोई इस प्रकार का संकोच नहीं हुआ करता था, इसलिए वो हर प्रकार का रिस्क लेने के लिए तैयार थे। श्रील प्रभुपाद के लिए श्रील प्रभुपाद ने कहा लंदन में जाके प्रचार करो, लंदन में जाके सेंटर खोलो, और ये जो कभी अमेरिका से बाहर नहीं निकले वो गए लंदन बिना किसी पैसे, एक फूटी कौड़ी नहीं, और ये लोग, और ऐसा नहीं था कि ये बड़े बड़े सन्यासी थे जो कि शास्त्र को जानते थे, प्रचार कैसा करना है जानते थे, 3 गृहस्थों को श्रील प्रभुपाद ने भेजा, और ये तीन गृहस्थ हाल ही में इनकी दीक्षा हुई, और दीक्षा कैसे कि एक दिन पहले 16 माला शुरू किया, अगले दिन दीक्षा, और तीसरे दिन लंदन जा रहे हैं सेंटर खोलने के लिए, इस्कॉन का सेंटर खोलने के लिए। और प्रभुपाद उस समय, प्रभुपाद को भी कोई संकोच नहीं होता था, प्रभुपाद उस समय केवल न्यूयॉर्क में एक स्टोर फ्रंट मतलब ये जो हमारा मैचलेस गिफ्ट स्टॉल है उसका भी नाम मैचलेस गिफ्ट ही था, ये जो मैचलेस गिफ्ट स्टॉल है इतना बड़ा बस ये था इस्कॉन हेडक्वार्टर्स। कितना बड़ा वो जो है ना दुकान, उतनी बड़ी बस। और वहां पर प्रभुपाद रजिस्टर कर रहे हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो कुछ पूछ रहे थे प्रभुपाद इंटरनेशनल सोसाइटी, उनको तो ये भी विश्वास नहीं था उस समय कि वो 26 सेकेंड एवेन्यू जो स्ट्रीट है उसके बाहर भी इस्कॉन जाएगा कि नहीं। लेकिन प्रभुपाद में कोई संकोच नहीं था, इसलिए वो श्रील प्रभुपाद से उन्होंने वो लिया विदाउट हेजिटेशन। ठीक है, लंदन में जाके सेंटर खोलना है तो श्याम सुंदर प्रभु और उनकी पत्नी मालती माता जी, वो मालती माता जी की छोटी सी पुत्री उस समय सरस्वती जिनका नाम, तो वो गोद में थी और ऐसी अवस्था में वो लोग लंदन गए और एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में रहते थे। एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लंदन में जहां पर बर्फ पड़ती है, कार्डबोर्ड के बॉक्स में रहते थे। और वो बता रहे थे कि लंदन में एंट्री करने के लिए आपको कम से कम 1,000 पाउंड दिखाना पड़ता था इमिग्रेशन में कि है आपके पास पैसे। तो वो 1,000 पाउंड भी किसी से उन्होंने लोन लिया था अमेरिका में, और वो एक कपल एंट्री किए और फिर वो 1,000 पाउंड को वापस से मनी ऑर्डर के रूप में अमेरिका भेजा। फिर दूसरा कपल एंट्री किया, वापस उन्होंने तीसरे कपल को एंट्री करने के लिए उसको भेजा, और फिर तीनों कपल एंट्री किए और फिर वो 1,000 पाउंड वापस लौटा दिया। अब एक फुटी कौड़ी नहीं है। और वहां पर श्याम सुंदर प्रभु वो अपेक्षा कर रहे थे कि किसी को नहीं जानते, लंदन में किसी को नहीं जानते, कोई सेंटर खोलने की कोई आशंका दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उनका ख्वाब है जॉर्ज हैरिसन से मिलना है, बीटल्स के जो मेन सिंगर है जॉर्ज हैरिसन। हम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता होगा, हमको पता ही नहीं जॉर्ज हैरिसन कौन था। मान लो कि कोई मान लो वो इंडिया में आए हैं बंबई में, और बंबई में किसी को नहीं जानते, कोई पैसा नहीं, लेकिन मिलना अमिताभ बच्चन से, अब कैसा लगा। तो ये जॉर्ज हैरिसन उस समय ये उससे भी ज्यादा प्रसिद्ध, और उनकी मीटिंग हुई क्योंकि निसंकोच, कोई हृदय में कोई डर नहीं था, इनकी मीटिंग हुई। वो जॉर्ज हैरिसन खुद श्याम सुंदर प्रभु से मिले। और अब यदि आप जाओ तो वेस्टर्न इस्कॉन में सबसे सक्सेसफुल लंदन के प्रोजेक्ट्स है, यहां की शुरुआत इस प्रकार से हुई। गुरुदास प्रभु उनकी हिम्मत इतनी थी कि मायापुर के फेस्टिवल के लिए, और मायापुर में उस समय, अभी जो मायापुर का मंदिर आप देखते हो इतना भव्य मंदिर, उस समय तो केवल राइस फील्ड्स और कुछ नहीं था वहां पर, डीटीज भी नहीं, केवल राइस फील्ड्स और एक बस झोपड़ा सा था प्रभुपाद का भजन कुटीर। तो वहां के एक गौर पूर्णिमा फेस्टिवल के लिए प्रभुपाद ने कहा था कि जितने हमारे वेस्टर्न डिसाइपल्स हैं सबको वहां पे आना चाहिए गौर पूर्णिमा फेस्टिवल के लिए। तो गुरुदास प्रभु उन्होंने प्रभुपाद प्रसन्न हो सब डिवोटीज को उन्होंने वेस्ट से मर्सिडीज बसेस में भर भर के लेके ड्राइव करके लाए, कहां, जर्मनी से मायापुर। यू वोंट बिलीव, गुरुदास प्रभु ड्रोव 10 मर्सिडीज बसेस फ्रॉम जर्मनी टू मायापुर। हमको यदि कोई बोले यहां से बंबई जाने के लिए तो सोचते हैं ट्रेन से जाए, किससे जाए, टैक्सी से। वो जर्मनी से मायापुर ड्राइव करके मर्सिडीज बसेस लेकर आए, और ऐसा नहीं किसी ड्राइवर वाइवर को अपॉइंट किया था, सब डिवोटीज ने ड्राइव किया, सब डिवोटीज ड्राइव किए और डिवोटीज बैठे और प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए। तो उस समय 1970s में ये एक बहुत बड़ा न्यूज था पूरे वेस्ट बंगाल में कि जर्मनी से मर्सिडीज बसेस आई हैं 10-10। तो इस प्रकार से ये जैसे गुरुदास प्रभु वो बता रहे थे कि मतलब इनके अंदर कोई डर नहीं था, बस प्रभुपाद जो कहे हैं वो हमारे लिए वेद वाक्य है और प्रभुपाद परम सत्य हमें दे रहे हैं और हम परम सत्य का पालन कर रहे हैं, तो बाकी हमें किसी का डर नहीं। तो किसी कारण के वजह से उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, तो कोर्ट में वो जज गुरुदास प्रभु को पूछता है व्हाई यू वेयर सच फनी ड्रेस। गुरुदास प्रभु वो जज को पूछते व्हाई यू आर वेयरिंग फनी ड्रेस। सोचिए जज को सीधा पूछ रहे यू आर वेयरिंग फनी ड्रेस। वो जज बोलता है दिस इज माय यूनिफॉर्म। गुरुदास प्रभु दिस इज माय यूनिफॉर्म। तो वो इनका कन्विक्शन, इनका जो दृढ़ विश्वास देख के बोले कि जाओ भाई कौन तुमसे मुंह लगे। तो ये आध्यात्मिक स्तर का एक लक्षण है। क्या लक्षण? कि संकोच से परे। और भारत में ज्यादा देखा जाता है कि भारत में हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, तिलक लगा के बाहर जाएंगे तो लोग बोले ये क्या किया आज। तो कई बार तो तिलक विलक मिटा के और कंठी माला को थोड़ा लंबा अंदर रख के कई बार जाते हैं ना ऐसे कि कंठी माला भी देख लेंगे तो पूछेंगे कि। जैसे मैं जब एयरफोर्स में था तो मैं इस प्रकार से कंठी माला पहना करता था, तो जब पहली बार देखा कंठी माला ऐसे तो सबको धीरे धीरे डाउट होने लगा कि इसने पहले वो सब कुछ छोड़ दिया, अब ये कंठी माला पहन लिया इसने। बाबा 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 बुलाते थे अभी अब ये कंठी माला अभी पता नहीं और क्या जटा धारण करेगा और क्या क्या होगा। तो बहुत हम देखते हैं कि भारत में ये भगवान की भक्ति करने में संकोच होता रहता है हमारा। और एक है कि शारीरिक रूप से और फिर बाद में मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से, कि मैं पूर्ण शरणागति अभी करूं या 10 साल बाद करूं। अभी तो साधना भक्ति में हूं ना, फिर साधना भक्ति में धीरे धीरे जब अनर्थ निवृत्ति, फिर बाद में आगे चलकर पूर्ण शरणागति। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभुपाद के जो अनुयायी उस समय, वो इस्कॉन की स्थापना इतने भव्य तरीके से कर पाए क्योंकि उनके अंदर बिल्कुल भी संकोच नहीं था। यहां तक कि वो जब भारत में आए, अच्छा ठीक है ये मान लिया जाए कि वेस्ट में जब वो ये वैष्णव कल्चर का पालन कर रहे थे पब्लिक में, तो वहां तो वैसे भी कोई जानता नहीं, वहां तो वैसे ही जो उस समय के हिप्पी वो अलग अलग अतरंगी तरीके से घूमते थे, तो वो देखते थे ठीक है ये नया कोई फैशन चालू किया होगा इन्होंने ये इस प्रकार से वेशभूषा। लेकिन वो जब भारत में भी आए तो भारत में भी बिल्कुल भी उन्हें कोई संकोच नहीं। इसे यही वो फेमस गुरुदास प्रभु का पास्ट टाइम कुंभ मेला में श्रील प्रभुपाद लेक्चर नहीं दे रहे, उन्होंने गुरुदास प्रभु को भेजा इस्कॉन के पंडाल में लेक्चर देने के लिए, और बड़े बड़े महंत बैठे हैं, पंडित महंत अलग अलग अखाड़ों के, कुंभ मेला में अखाड़े होते हैं ना, तो अखाड़ों के अलग अलग महंत बैठे हुए हैं और गुरुदास प्रभु प्रवचन कर रहे हैं। प्रवचन में कहते हैं, क्योंकि वो सब मायावादी थे, वो तो गुरुदास प्रभु जानते थे सब मायावादी, तो उन्होंने प्रवचन में कह दिया कि ये जो मायावाद सिद्धांत है कि सब कुछ एक है, हम भगवान सृष्टि सब कुछ एक है, ये उसी के समान है जैसे कि आपको यदि मैं हलवा दूं या विष्ठा दूं क्या ही किए, तो साहब सुने, ये क्या उदाहरण दिया इसने। तो गुरुदास प्रभु आगे भी बोल दिए कि कलर है दोनों का। तो वो गए प्रभुपाद के पास और प्रभुपाद को जाके कहे कि ये क्या आपके अमेरिकी शिष्यों को सिखाया आपने, ऐसा ऐसा उदाहरण देता है। तो प्रभुपाद ने बुलाया गुरुदास प्रभु को, क्या उदाहरण दिया तुमने? मैंने तो कहा ये मायावाद सिद्धांत इतना फालतू है कि अगर हम कहें हलवा और ये। तो प्रभुपाद उस समय वो जितने सारे वो महंत आए थे, प्रभुपाद ने कहा माई डिसाइपल्स यू नो दे यूज वेरी ग्राफिक एग्जाम्पल्स, सो डोंट, दे आर फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका इज अ वेरी ग्राफिक प्लेस। वो लोग सब चले गए, फिर प्रभुपाद ने गुरुदास प्रभु को बुलाया, बोला टेल मी व्हाट इज दैट एग्जाम्पल, आई लाइक्ड इट, आई विल यूज इट नाउ इन माय लेक्चर। मुझे बहुत अच्छा लगा वो उदाहरण तुम्हारा। तो भारत में भी उनको बिल्कुल कोई ऐसा संकोच नहीं था कि ये बड़े बड़े पंडित बैठे हैं इनके सामने हम क्या श्लोक कहेंगे या लेक्चर देंगे, नहीं, पीछे उनका सपोर्ट किया था शिल प्रभुपाद। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तुम्हारा सारथी बना और तुम फिर भी संकोच कर रहे हो। अरे तुम धर्म को लेकर संकोच कर रहे हो और जो धर्म को स्थापित करने वाला एकमेव व्यक्ति मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम्हारे लिए यही श्रेयस्कर है ये धर्म युद्ध करना। तो इसलिए अर्जुन का अब संकोच भगवान दूर कर रहे हैं। तो अगला मुद्दा ये, क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई कल्याण नहीं है। इसके विषय में भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं कुंती महारानी का संदेश। महाभारत में इसका वर्णन है कि जब भगवान दूत बनकर गए थे हस्तिनापुर, उसमें कुंती महारानी हस्तिनापुर में थी। तो दुर्योधन ने तो भगवान का एक प्रस्ताव न माना और दुर्योधन बस युद्ध ही करना है और कुछ नहीं मुझे चाहिए। तब उस मीटिंग के पश्चात, उस सभा के पश्चात फिर भगवान कुंती महारानी से मिलने गए। तो कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण को कहती हैं कि युधिष्ठिर को यह संदेश मेरा देना कि युधिष्ठिर जो है वो धर्म को लेकर वो संकोच करेगा युद्ध करने में, मैं जानती हूं। तो कुंती महारानी भगवान से कहती है युधिष्ठिर को मेरा ये संदेश देना कि वो क्षत्रिय, वो एक क्षत्राणी के गर्भ से पैदा हुआ है, वो मेरे गर्भ से पैदा हुआ है और एक क्षत्रिय होने के नाते यदि वो अपने बाहुबल के जोर पर हस्तिनापुर को नहीं जीतेगा तो वो मेरा पुत्र कहलाने के लायक नहीं। यहां कुंती महारानी ये संदेश युधिष्ठिर महाराज के लिए कृष्ण के द्वारा भिजवा रही और कुंती महारानी कहती हैं कि युधिष्ठिर को कहना कि कुबेर ने राजा मुचकुंद को राज्य पूरा ऐसे ही दे दिया था खुश होकर, पूरे स्वर्ग का राज्य दे दिया था, परंतु महाराज मुचकुंद ने कुबेर से वो राज्य लिया नहीं, कहे कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं भिक्षा में राज्य नहीं लूंगा, मैं लड़ूंगा, हरा के जीत के लूंगा। तो ये कुंती महारानी कहती है क्षत्रिय का भाव होता है। और फिर कुंती महारानी ने एक और कथा, माता विदुला इनकी कथा वो भगवान को सुनाई कि ये भी युधिष्ठिर महाराज को सुनाना। और देखिए जैसे भगवान जानते नहीं लेकिन कुंती महारानी से सुन सुन के फिर युधिष्ठिर महाराज को, जैसे वो एक प्रेषक होता है, पोस्टमैन होता है, उस प्कार से वो मैसेज कन्वे कर रहे थे। तो ये माता विदुला की कथा सुनाई कि माता विदुला एक क्षत्राणी थी और इनके पुत्र का नाम था संजय। तो संजय वो युद्ध करने के लिए गए और युद्ध में हार कर वापस भाग कर आ गए, डर के मारे सब कुछ दे दिया और भाग कर आ गए। तो जब विदुला ने देखा कि मेरा पुत्र फिर लौट आया है, तो केवल अपने पुत्र के चेहरे के हाव भाव को देखकर वो जान गई कि ये युद्ध जीता नहीं है। तो युद्ध जीता नहीं है और जीवित कैसे, या तो मर जाना चाहिए था या फिर युद्ध जीतना चाहिए था, ये जीवित आ गया। तो माता विदुला संजय से कहती हैं कि तुम घर में प्रवेश नहीं कर सकते, घर में प्रवेश ही नहीं दिया। कहा कि तुम वो शत्रुओं के मनोरंजन के लिए गए थे क्या, उनको परास्त करने के लिए मैंने तुम्हें पैदा किया था, या तो परास्त करो या मरो। ये ऐसे वापस आना कोई तुम्हें अंदर एंट्री नहीं, तुम बाहर जाओ, निकलो यहां से, जाओ फिर से उसे परास्त करके आओ या अपने प्राण वहां पर त्याग कराओ रणभूमि पर। तो ये कथा महारानी कुंती ने भगवान श्री कृष्ण को सुनाई और कहा कि युधिष्ठिर महाराज को सुनाना, क्योंकि मैं जानती हूं कि उसके मन में हर समय ये दुर्योधन और धृतराष्ट्र इनके प्रति दया भावना बनी रहती है। तो यहां पर अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संकेत कर रहे हैं, न विकंपितुम अर्हसि, कि अर्जुन तुम संकेत तुम संकोच कर रहे हो, जबकि तुम्हारी माता को संशय था युधिष्ठिर महाराज के ऊपर कि वो संकोच करेगा युद्ध करने के लिए, और तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास था कुंती महारानी को कि अर्जुन कभी संकोच नहीं करेगा। यदि पांडवों में से किसी ने भी संकोच किया तो केवल युधिष्ठिर कर सकते हैं, अर्जुन कभी नहीं। तो तुम अपने माता के सामने अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे और तुम संकोच यहां पर कर रहे हो कि ये समाचार यदि कुंती महारानी को पहुंच जाए तो मैं छोड़ दो आगे की गीता कुंती महारानी सुनाएगी तुमको। तो इसलिए यहां पर वो कुंती महारानी ने जो भगवान को संदेशा दिया था युधिष्ठिर महाराज को सुनाने के लिए, और युधिष्ठिर महाराज हैं कौन, स्वयं साक्षात धर्मराज। तो जो धर्मराज यहां पर संकोच नहीं कर रहे युद्ध करने के लिए और तुम धर्म को पकड़े हुए धर्म की आड़ में पीछे युद्ध नहीं करना चाहते, तो कम से कम अपने भाई की ओर देखो कि वो यहां पर शोक नहीं कर रहे, संकोच नहीं कर रहे, तुम क्यों कर रहे हो अर्जुन। तो इसलिए क्षत्रिय का जो धर्म युद्ध उसका स्वधर्म है वो भगवान बता रहे हैं। अब अगला प्रश्न ये है कि भगवान अर्जुन को ये कहते हैं कि ये युद्ध तुम लड़ोगे तो ये धर्म युद्ध है, और इसमें तुम मरोगे तो भी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होने वाली। अगले श्लोक में भगवान उसके विषय में कहने वाले हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होगी यदि तुम मर भी गए, जीतोगे तो धर्म की स्थापना करोगे, ये श्रेय मिलेगा तुम्हें, मर भी गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो अब ये प्रश्न है कि कौरव जो हैं, क्या भगवान उनके विषय में भी ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे लिए भी धर्म युद्ध है। आज के श्लोक में तो पांडवों को कह रहे हैं ना भगवान ये धर्म युद्ध, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मानो दुर्योधन ने सुन लिया ये श्लोक तो वो भी पूछे, तो हाँ हम लोग भी धर्म युद्ध ही कर रहे हैं ना, तो अब क्या उत्तर दोगे? कौरवों के लिए भी क्या ये एक धर्म युद्ध था जैसे भगवान कह रहे हैं? किसके लिए? पांडवों के लिए। हमारी विद्वत सभा क्या कहती है? कईयों की गर्दन ऐसी हिल रही है, कईयों की ऐसे हिल रही है। था उनके लिए भी धर्म युद्ध था, और कौन कहता नहीं था, नहीं था क्यों? ठीक है, तो क्योंकि उनका उद्देश्य वो अधर्म के बलबूते पे था इसलिए। हाँ, आप क्या बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोल रहे थे। हाँ हाँ तो ये प्रश्न यहां पर है कि अर्जुन वो संकोच कर रहे हैं कि क्या मैं सचमुच धर्म युद्ध कर रहा हूं या नहीं, अर्जुन का ये संकोच था। हाँ नहीं, वो तो मान लिया कि ठीक है अर्जुन युद्ध करेंगे, वो तो धर्म युद्ध। यहां पे प्रश्न है कि दुर्योधन जो कर रहा है, दुर्योधन भी तो युद्ध करने वाला है ना। हाँ ठीक है, तो मतलब वही बात है कि उनकी तरफ से नहीं। हाँ मतलब यदि दुर्योधन से पूछो कि तुम्हारा धर्म क्या है, तो दुर्योधन का मेरा धर्म है कि इन सबको मार के मैं गद्दी पे बैठूं, वो आप बोल रहे। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। महाभारत में दुर्योधन जानता था, दुर्योधन ने भगवान को कहा है जानामि अहम धर्म, हे कृष्ण मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, जो पांडव पालन कर रहे हैं वो धर्म है, लेकिन मैं नहीं पालन करने वाला उसका, उसने बोला। और उसने भगवान को भी कहा कि जानामि त्वाम महापुरुष, कि मैं ये भी जानता हूं कि तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, लेकिन मैं तुम्हारे शरणागत नहीं होने वाला। इसे कहते हैं राक्षस प्रवृत्ति, कि जानते हुए मैं जानता हूं कि ये भगवान है, हाँ हिरण्यकश्यपु जैसे, हाँ ये विष्णु भगवान है ना, इनको मारूंगा मैं। तो यहां पर दो चीजें हैं, एक है विजय और एक है पराजय। किसी की तो विजय होने वाली है और किसी की पराजय होने वाली है। तो अब यह समझ में आता है कि कौरवों की यदि विजय हुई तो अधर्म युद्ध, क्योंकि अधर्म की स्थापना वो करने वाले हैं, और यदि कौरवों की पराजय हुई तो पराजय किनके हाथों होंगी, जो धर्म के पालक हैं, जो धर्म का पालन कर रहे हैं, जो धार्मिक पांडव हैं, उनके हाथों इनकी हत्या होने वाली है। तो इसलिए उनके हाथों यदि ये मरेंगे तो कौरवों के पराजय में उनकी जीत, ये कह सकते हैं। कौरवों के पराजय में उनकी जीत है क्योंकि उनका उद्धार उसमें निश्चित है। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए बहुत से योद्धा वो जानबूझ के दुर्योधन के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। एक बहुत ही सूक्ष्म मुद्दा है कि वो जानबूझ के दुर्योधन के पक्ष में युद्ध कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि दुर्योधन तो हारने वाला है, हाँ, और हम दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करेंगे तो हम तो मरेंगे, लेकिन मरेंगे किन के हाथों? पांडवों के हाथों, जो भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में युद्ध कर रहे हैं। तो हम मरेंगे भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में, भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए, तो हमारी मुक्ति तो निश्चित। और हमारी मुक्ति उन पांडवों की मुक्ति से पहले होगी, क्योंकि वो तो जिएंगे ना, और उनके जो योद्धा हैं वो भी जिएंगे, तो उनको फिर जीने के बाद जब मरेंगे तब उनकी मुक्ति होगी, लेकिन उनसे पहले तो हमारी मुक्ति होगी। देखो उनका कैलकुलेशन क्या था, उनको ये दुर्योधन पार्टी से कोई मतलब नहीं था। तो इसलिए कौरवों के लिए भी भगवान ये कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, तुम यदि इनको जिताओगे तो पाप इनको लगेगा अधर्म स्थापित करने का, और उसका कमीशन तुमको भी मिलेगा, है ना, ब्रोकरेज तुमको भी देंगे हो। लेकिन यदि तुम युद्ध करके जीतोगे तो इनको मारोगे, तो इनके मरने में उनका उद्धार लिखा है और तुम इनको मारोगे उसमें तुम्हारा उद्धार लिखा है, तुम धर्म स्थापित करोगे। तो ये लॉजिक, इस लॉजिक से भगवान अर्जुन को इस श्लोक में समझा रहे हैं कि तुम युद्ध करो, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य, क्योंकि कौरवों का भी, तुम कौरवों का हित चाहते हो ना, भगवान ये पूछ रहे हैं कि तुम कौरवों का हित चाहते हो, तो कौरवों का हित इसी में लिखा है कि तुम गांडीव उठाओ और उनको मारो, इसी में उनका हित लिखा हुआ है। अब यदि ये पूछा जाए कि आजकल के जो युद्ध, आधुनिक युद्ध, जितने वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, ये जो आधुनिक युद्ध आजकल के चलते हैं, ये कौन सी श्रेणी में आते हैं? हाँ, अवश्य ही अधर्म की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि यदि पार्टियों को देखा जाए तो दोनों पक्षों के जो योद्धा हैं उनके आचरण यदि देखे जाएं तो आचरणों में कोई सदाचार नहीं दिखता। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं खुद वायुसेना में था, और जितने आजकल के हमारे, हाँ वो लोग जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा करते हैं, लेकिन यदि व्यक्तिगत रूप से ज्यादा उनके आचरण यदि देखा जाए, मैं कहूं मेजर परसेंटेज उनके आचरण यदि देखे जाए, तो ये जो चार नियम हम पालन करते हैं शास्त्रों के आधार पर, ये चारों नियम तोड़े जाते हैं, और वो भी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, नॉट ओनली अप्रूव्ड, सरकार मान्य, देशी दारू केंद्र होता है ना वैसे। तो यदि देखा जाए कि योद्धाओं के आचरण क्या है, तो कोई सदाचार नहीं दिखता उसमें आजकल। फिर जो नेता हैं, जो उन योद्धाओं को वहां पर खड़े किए बंदूक ले लेके, यदि उनके घर में जाके उनके आचरण देखे जाए कि उनके आचरण क्या है। देखिए स्टैंडर्ड पिछले युगों का ऐसा था कि दुर्योधन जैसा राक्षसी प्रवृत्ति का नेता भी जब अर्जुन गए पांच बाण मारने मांगने के लिए, तो दुर्योधन ने निकाल के दे दिए, और पहले के जो युद्ध होते थे उसमें जो राजा सबसे आगे रहता था, ऐसा नहीं कि वो अपने बंगले में जेड सिक्योरिटी के अंदर बैठ के टीवी में देख रहा है क्या हो रहा है उधर फ्रंट में। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किंग वॉज दैट ही हैड टू बी द फर्स्ट वन टू इनॉग्रेट द वॉर, नॉट जस्ट हाइड इन सम बंकर। तो इसलिए अभी वो तो हमको ज्यादा सेमिनार में सुनने की जरूरत नहीं कि नेताओं का जीवन कैसा है आजकल, वो तो सब पेपरों में, मीडिया में समझ में ही आता है। और यहां तक कि यदि वो किसी देश की रक्षा भी कर रहे हैं, तो वो नागरिकों का जीवन यदि देखें कि किनकी रक्षा कर रहे हैं, तो यदि उन नागरिकों का जीवन भी देखें तो कोई बहुत सदाचारी जीवन नहीं है जिन नागरिकों की रक्षा कर रहे हैं। तो यदि ये तीन पार्टी, होता क्या है, दो पक्ष हैं, नेता हैं और नागरिक, यदि ये तीनों पार्टी के आचरण धर्म के अनुसार नहीं हो रहे, तो वो धर्म युद्ध कैसे कहलाया जाएगा। तो इसलिए आधुनिक युद्ध की श्रेणी उससे बाहर ही है। अब भगवान स्वधर्म इस शब्द से इस श्लोक का शुरुआत किए हैं। तो इसकी व्याख्या श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में दिए हैं कि एक स्वधर्म होता है शारीरिक स्तर पर और एक होता है आत्मा के स्तर पर, एक बद्ध अवस्था में और एक मुक्त अवस्था में। तो शारीरिक स्तर पर हमारे जितने सारे स्वधर्म हैं कि हाँ हमें ये शरीर मिला है तो शरीर को खिलाना है, पिलाना है, सुलाना है, पहनाना है, नहलाना है, जो कुछ, तो ये सब शारीरिक स्वधर्म है। और आत्मा के स्तर पर जो भगवान अब कह रहे हैं, क्योंकि भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि तुम अब तक जो शोक कर रहे हो तुम्हारे शारीरिक स्तर का जो स्वधर्म है उस पर शोक कर रहे हो कि ये मेरे शरीर से संबंधित, इनके शरीर खत्म होने वाले हैं तो कैसे मैं इनके बिना शरीर के जीऊंगा। लेकिन तुम ये जानो आत्मज्ञान के बारे में, बाद में भगवान ये समझा रहे हैं कि अब जो असली स्वधर्म है वो आत्मा के स्तर पर तुम शुरू करो, और आत्मा के स्तर पर तुम्हारा स्वधर्म है क्या, मेरे आदेशों का पालन करना, क्योंकि जीवेरे स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, तुम मेरे दास हो और मेरे दास होने के नाते मेरे आदेशों का पालन करो, और मेरा आदेश क्या है, युद्ध। तो अर्जुन की दुविधा यहां पर यह समझ में आ रही कि अर्जुन के सामने स्वधर्म एक जगह है और स्वजन, स्वजन और स्वधर्म के बीच में अर्जुन दुविधा में पड़े हैं, और भगवान यही समझा रहे हैं कि तुम्हारा स्वधर्म है कि तुम अपने स्वजनों को मारो। ये देखो अर्जुन वो सोच रहे थे कि मेरा स्वधर्म, अब किसी को भी पूछो कि क्या स्वधर्म होना चाहिए, जैसे बहुत बार लोग भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लांछन लगाते हैं कि ये कौन से भगवान की आप पूजा करते हैं जो अपने ही मामा को मार डाले, कंस मामा को, अपने ही मामा को, अपने ही स्वजन को जिन्होंने मार दिया, ऐसे भगवान की आप पूजा करते हैं। एक व्यक्ति मुझे पूछ रहा था प्रश्न कि सबसे पहले बताओ आप ये कृष्ण कृष्ण का नाम करते हो लेकिन उन्होंने तो अपने ही स्वजन को मारा ना, किसको, कंस को। तो मैंने पूछा अच्छा भगवान कृष्ण के जन्म से पहले कंस के आचरण आप जानते, कंस क्या क्या करता था। अच्छा मैंने पूछा कि रिश्ते में एक भांजा और मामा होता है और एक भाई और बहन, दोनों में क्लोज कौन है, भाई बहन है ना, तो भगवान के पैदा होने से पहले कंस देवकी की पूजा करता था क्या, वो तो शादी के दिन मारने पे उतारू हुआ था देवकी को। तो जब ऐसा मामा होगा जो अपने ही बहन को उसकी शादी के दिन अपने ही हाथों से जान से मारने के लिए उतारू है, तो तुम ऐसे कंस को पूज रहे हो। और इतना ही नहीं, भगवान ने पैदा होते ही कंस को नहीं मारा, भगवान पैदा हुए वो तो गए गोकुल में अपना माखन मिश्री खा रहे थे, और ये कंस वहां मथुरा में बैठा बैठा भेज रहा था कभी पूतना, कभी अघासुर, कभी बकासुर, कभी ये असुर, कभी वो असुर। तो ये हम कहते हैं ना कि जैसे मामा खिलौने भेजता है अपने भांजे के लिए, तो ये जो मामा है ये ऐसे ऐसे खिलौने भेज रहा था, 12-12 मील लंबी गुड़िया, पूतना, बारबी डॉल। तो उसने बारबी डॉल भेजा, कितने कितनी बड़ी थी ये 12 मील लंबी बारबी डॉल, तो बच्चे भी खेलते खेलते तोड़ देते ना खिलौनों को, तो भगवान ने भी तोड़ दिया, जैसे तोड़ दिया तो मामा ने दूसरा खिलौना भेजा तृणावर्त, फिर उसको भी तोड़ दिया, फिर बाद में भगवान ने सोचा कि अब मामा को ही तोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर अर्जुन के सामने भगवान कह रहे हैं कि, और भगवान अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि स्वजन अपने, तुम्हारा स्वधर्म है कि अब ये जो तुम्हारे स्वजन अधर्म के झंडे के नीचे खड़े हैं, ये तुम्हारे स्वजन तब तक थे जब तक ये अधर्म के झंडे के नीचे नहीं खड़े थे, अब ये पूरे विश्व के सामने अधर्म के झंडे के नीचे है इसलिए अधार्मिक है, तुम्हारे स्वजन नहीं रह गए अभी, इसलिए तुम अपने स्वधर्म का पालन करो। तो भगवान ने अब इस श्लोक में कहा है श्रेय। श्रेय का अर्थ क्या होता है? हाँ, कि तुम्हें क्या क्रेडिट मिलेंगे। तो यदि देखा जाए, अर्जुन ने पहले अध्याय के इस 31 श्लोक में अर्जुन ने भगवान से पूछा था, नच श्रेयो अनुपश्यामि, कि मुझे इसमें कोई श्रेय नहीं लगता। नच श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। तो यदि आपको याद है, इस श्लोक में अर्जुन ने श्रेय के विषय में पूछा कि मुझे इसमें कोई क्रेडिट नहीं दिखता कि मैं अपने ही स्वजनों को मारूं। फिर वही अर्जुन 2.7 में भगवान से क्या कहते हैं, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहितं मे, कि अब भगवान आप मुझे बताओ कि मैं नहीं जानता मेरा श्रेय कहां पर छिपा हुआ है। वेर इज माई क्रेडिट हिडन, यू टेल मी कृष्ण। निश्चितम, मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूं, बन चुका हूं आप गुरु के रूप में, मुझे जो मेरे श्रेयस्कर है वो मुझे बताइए। तो इसलिए भगवान अर्जुन के द्वारा इस्तेमाल किए गए दो जगह पर ये शब्द श्रेय का उत्तर आज इस श्लोक में दे रहे हैं कि तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है कि तुम अपने स्वधर्म का पालन करो। और भगवान केवल स्वधर्म बोल रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि तुम युद्ध करो। भगवान कह रहे तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वधर्म क्या है? क्षति त्रायते इति क्षत्रिय, जो क्षति दूर करे किसी की वो है क्षत्रिय। तो तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म है कि जितनी क्षति ये दुर्योधन ने पैदा की है त्रायते वो दूर करो, वो तुम्हारा स्वधर्म है, इसलिए तुम युद्ध करो। और भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि तुम यदि मेरे लिए युद्ध नहीं करोगे, क्योंकि मैं अंततः श्रेय सबका मैं ही हूं, भगवान बोल रहे हैं। तो भगवान याद दिला रहे हैं कि जो मथुरा के ब्राह्मण, जब भगवान ग्वाल बाल के रूप में कृष्ण बलराम उन्होंने ग्वाल सखाओं को भेजा, ये मथुरा के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे और इन्हें भूख लगी थी कृष्ण बलराम और ग्वाल सखाओं को, तो भेजा कि कुछ भिक्षा मांगो इनसे, और इन्होंने इनको भगा दिया। और हम ये कथा जानते हैं, फिर इनकी जो पत्नियां उन्होंने कृष्ण बलराम और सारे ग्वाल सखाओं को सब कुछ अर्पित किया। और फिर ये पत्नियों के पति ब्राह्मण, इन्हें फिर समझ में आया कि जिनके लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, जो यज्ञेश्वर हैं साक्षात कृष्ण, वो आए हमारे द्वार पर मांगने के लिए और हमने उन्हें मना कर दिया, और ये किस प्रकार का हम यज्ञ कर रहे हैं? फिर इस यज्ञ का फायदा क्या कि जैसे जिसकी शादी होने वाली है उसको ही एंट्री नहीं, तो जिसके लिए यज्ञ कर रहे हैं जो यज्ञेश्वर, वो मांगने आए और उनको ही हमने अर्पित नहीं किया, तब वो अपने आप को कोसते हैं। ये मथुरा के ब्राह्मण अपने आप को कोसते हैं और इस सुंदर श्लोक में वो कहते हैं, धिक जन्म नस्त्री वृद्ध यत्तद धिक्वृतम धिक बहु ज्ञातम धिक कुलम धिक क्रिया दाक्ष्यम विमुखा ये त्वधोक्षजे। धिक धिक, कितनी बार धिक धिक इस्तेमाल किया है, इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन क्या है? टू हेल विथ अवर जन्म, हम जो इतने बड़े ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, टू हेल विथ अवर जन्म, टू हेल विथ त्रिवृद्यत, कि जो तीन जन्म, एक ब्राह्मण के तीन जन्म होते हैं, एक शारीरिक रूप से, उसके बाद में जब वो दीक्षा लेता है, और तीसरा जन्म जब वो यज्ञ अनुष्ठान करता है। तो कहते हैं ये तीनों जन्म हमारे फालतू, दिग जन्म दिग व्रत, हमने जो भी व्रत लिया है इस यज्ञ को पूरा करने के लिए, टू हेल विथ दैट व्रत, टू हेल विथ बहुज्ञातम, जितना हमने वेद शास्त्र पढ़ रखा है, टू हेल विथ दैट ऑल्सो। धिक कुलम, जिस कुल में हम पैदा हुए उस पूरे कुल का धिक्कार, धिक्कार हमारे जन्म, हमारे व्रत, हमारे कुल। धिक क्रिया दाक्षम, और हम जो इतने दक्ष हैं, ये सब क्रिया करने में धिक्कार है उस दक्षता के ऊपर, क्योंकि विमुखा ये त्वधोक्षजे, जो अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण उनके विमुख हम हो गए, जिनके लिए ये सब कुछ करना है, जिनसे हमें श्रेय मिलने वाला है इस यज्ञ का, उनके विमुख हम हो गए। तो भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि ये इतने बड़े बड़े ब्राह्मण वो पश्चाताप कर रहे थे, तो मैं नहीं चाहता कि तुम भी आगे चलकर पश्चाताप करो कि मेरे सानिध्य में साक्षात भगवान थे, उन्होंने मुझे धर्म की स्थापना करने के लिए एक अवसर दिया और मैं उस अवसर को खो दिया, जैसे कि ये विलाप कर रहे हैं। तो तुम उस स्थिति में न आओ, इसलिए अर्जुन अपने स्वधर्म का पालन करो, गांडीव उठाओ और युद्ध करो। हरे कृष्ण। तो अब अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को एक प्रलोभन दे रहे हैं कि यदि तुम मर भी गए अर्जुन तो भी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होने वाली है। तो अब आत्मज्ञान के पश्चात उन 20 श्लोकों में जो आत्मज्ञान भगवान ने सुनाया, अब धर्म ज्ञान प्रारंभ किया।
टुडेज कॉन्टेक्स्ट, हुम शुड बी कंसिडर्ड एज ट्रू क्षत्रियस प्रोटेक्टिंग धर्म? पीपल हु इंस्टिगेट some activity or people who really protect the dharma and how it should be protected?
See, first of all, kshatriyas in Kaliyuga, there is no one born as kshatriya. Everyone is born shudra. In Kaliyuga, everyone is born shudra. Anyone who says that, you know, I am Sihan, I am born in Rajput Thakur Siha Parivar. You know what is the meaning of Siha? That these Kshatriyas, Prabhupada writes in the purport also of this verse, that real Kshatriyas were such that they would fight one-to-one combat with a lion. And with their hands, they would defeat a lion. And then they would get the title of Siha. Abhi wo... वो शेर की चिंगाड़ भी टेप रिकॉर्डर में सुना दो तो बतलून गीली हो जाती है। सो द रियल क्षत्रियस आर दोज हु हैव दोज क्वालिटीज, लाइक इट इज मेंशन इन दी भगवद गीता कि वन हु फर्स्ट ऑफ ऑल डजंट फ्ली फ्रॉम द बैटल फील्ड, एंड यस एज यू आर सेइंग, वन हु प्रोटेक्ट्स रियल धर्म, दैट इज अ क्षत्रिय। So anyone who is just in army, air force or navy and protecting, he doesn't even know whom he is protecting. He simply knows I am being paid, maro isko. He doesn't even know kisko maar raha hai, kyu maar raha hai, isko maarne ke baad kya hone wala hai. So that is not a kshatriya. Yes, kshatriya, if somebody can be called a kshatriya in Kali Yuga, is that person who has the chivalrous attitude, courageous approach to protect dharma. That is a kshatriya. That is something which...
When somebody is instigating some activity under the name of dharma and which is affecting the general population, who are the real protectors of dharma?
You are talking about what?
Recent incident. We just heard a verdict by the
High Court,
and the whole cities were in.
They are not kshatriyas.
No, they are not at all. But then, as a general person, whom should be considered as protectors of dharma? Politicians or people who go and play havoc when somebody instigates them, or
people who are following dharma. Yeah. Are the ones, even if there is one person who is following dharma, is the one who is protecting dharma. It is said that dharma rakshati iti dharma. That dharma will protect you if you protect the dharma. And protecting dharma means following the dharma. Not simply advertising that I belong to this dharma, but individually has no understanding of that dharma or no following of that dharma individually, personally. That is not a person who is protecting the dharma. Even if there is a person who is a commoner, but he is following the proper dharma based on the scriptures, then he is the one who is individually protecting the dharma. And then if collectively people are following that kind of dharma, then they are protecting dharma, not these kind of people. Yes. हाँ वो तो भगवान हम ये नहीं हम नहीं कहेंगे कि अर्जुन के मन में कोई सेल्फिश एटीट्यूड थी लेकिन भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन हालांकि अर्जुन का रिश्ता भगवान से ऐसा है कि भगवान गीता सुनाने के लिए अर्जुन को उस मोह में डाला था भगवान ने अर्जुन तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं अर्जुन मोह में नहीं जा सकते तो अर्जुन का ये जो तथाकथित मोह या स्वार्थ दिख रहा है ये हमें भगवद गीता सुनाने के लिए स्टेज किया गया था ये समझना चाहिए हमें और हाँ क्योंकि अर्जुन को वो भूमिका निभानी थी एक स्वार्थी बनने की भूमिका निभानी थी तो अर्जुन बखूबी निभा रहे थे यस यू आर राइट विल हैव आफ्टरवर्ड्स अनाउंसमेंट्स